ओम शांति। अभी हमारे बीच में हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय राजयोगिनी शिलू दीदी हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनको नमन करते हैं। कहते हैं विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। ये दीदी के जीवन से उतरता है। 11 वर्ष की अल्प आयु से ही परमात्मा को पहचान लिया। आप अपनी लौकिक पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ते रहे। तत्पश्चात आपने संपूर्ण रूप से अपना जीवन समर्पित ईश्वरीय सेवाओं के लिए कर दिया। आदरणीय दीदी अपनी तेजस्वी और निर्मल वाणी के माध्यम से विश्व के कोने कोने में बाबा का संदेश पहुंचाने के निमित्त बने टीवी प्रोग्राम तथा राजयोग के द्वारा सेवाओं का आपने विस्तार किया। जब सेवाएं विश्व पटल पर होने लगी कैसे योग किया जाए, वो कमेंट्री आपके द्वारा ही निर्मित हुई और उसका लाभ आज भी ब्राह्मण लेते रहते हैं। 64 वर्षों का ज्ञान चिंतन मनन साथ में जैसा चिंतन वैसा ही आपने अपनी जीवन बनाई। सबसे बड़ा सौभाग्य आपको मिला कि साकार ब्रह्मा बाबा की आपने विशेष पालना प्राप्त की। अव्यक्त बाप दादा से जिभ्या पर स्वयं सरस्वती विराजमान का वरदान भी आपने प्राप्त किया और बाबा आपको हर की पौड़ी भी कहते थे कि आप हर की पौड़ी हो, क्योंकि हर की पौड़ी पर लोग चलकर आते हैं, हर की पौड़ी वहां चलकर नहीं जाती है। आपका जैसा नाम है शिलू दीदी, वैसे ही शीतलता बरसाने वाले शीतल देवी हैं। दीदी को कभी भी हमने आज तक ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा। हमेशा आपका जो आवाज है एक ही स्लो आवाज में ही और इतना मीठा लगता है कि आप लोगों ने भी सुना है और आगे भी सुनेंगे। आपने 5 खंडों में 60 देशों में सफर किया और अफ्रीका मॉरिशियस में भी 2 वर्ष आपने सेवाएं दी और वहां सेवा केंद्र खोलने के भी आप निमित्त बने। एजुकेशन विंग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं और आज हमारे बीच हैं। सागर के किनारे पर खजाने नहीं आते, सागर के किनारे पर खजाने नहीं आते, जो लम्हे हाथ से फिसल जाएं, वो दोबारा नहीं आते। आओ डूब जाएं हम संस्कार शुद्धिकरण की मस्ती में, क्योंकि रोज ऐसे दिन सुहाने नहीं आते। तो अभी हम आदरणीय दीदी से सुनेंगे संस्कार शुद्धिकरण की विधि। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी जानकी जी ने हमें 3 बार ओम शांति कहना सिखलाया और जब जब दादी जानकी ओम शांति कहते थे तो 3 बार कहने के बाद क्या कहते थे, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। इतने नशे से दादी कहते थे, हम सबको भी नशा चढ़ जाता था, क्योंकि सचमुच मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, इन 3 वाक्यों में सारा ज्ञान आ जाता है। घर की याद भी आ जाती है, स्वदर्शन चक्र भी चल पड़ता है, स्वर्ग भी याद आता है, लक्ष्य भी याद आता है, लक्षण हमें उनके लिए धारण करने हैं वो भी याद आ जाता है। ये तीन वाक्यों से तो आज मैं देख रही हूँ इतने सारे भाई कुमार अधर कुमार बट्टी के लिए आए हैं, बाबा के शोकेस के सच्चे शोपीस हो आप। तो शोकेस में कौन सी चीजें रखी जाती है? अच्छी से अच्छी चीजें, खराब चीजें थोड़ी रखी जाती है शोकेस में। तो आप क्या बनने आए हो? भगवान के शोकेस के शोपीस। तो कैसे बनेंगे शोपीस? संस्कारों की शुद्धि करके, क्योंकि बाबा ने आकर सबसे पहला काम क्या किया? दिव्य ज्ञान का नेत्र दिया, तीसरा नेत्र दिया, जिससे दुरान देशी बना दिया। दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, जिससे घर की याद दिला दी, नई दुनिया की याद दिला दी, स्वदर्शन चक्र का ज्ञान दे दिया। तो दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि, ये सुंदर सौगात बाबा ने हमारे जन्मदिन पर हमें दी। अब उसके आधार से हमें क्या करना है वो लक्ष्य भी दिया। देवता तो बाद में बनेंगे, वो तो सतयुग में जाकर बनेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ब्राह्मण बनाया, ब्रह्मा की मुख संतान, मुख वंशावली, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण चोटी ये लकब दिया, सबसे ऊंचा कुल ब्राह्मण कुल है, और वो भी डायरेक्ट ब्रह्मा की मुख वंशावली। और ये लकब देकर हमें क्या लक्ष्य दिया कि अब तुम्हें फरिश्ता बनना है। पर फरिश्ता बनने से पहले संपूर्ण बनना है, संपूर्ण भी बनना है और संपन्न भी बनना है। ये दो शब्द अक्सर बाबा कहते रहते हैं, संपन्न और संपूर्ण। कई भाई बहने पूछते हैं दोनों में अंतर क्या है, संपन्न किसे कहेंगे और संपूर्ण किसे कहेंगे? तो मिसाल दिया जाता है चंद्रमा का, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चांद घटता बढ़ता है, लेकिन पूर्णमासी की रात वो संपूर्ण भी होता है और संपन्न भी होता है। संपूर्ण माना फुल, अर्थात गोल, बाकी दिनों में कुछ न कुछ आकार में फुलनेस में कमी है, तो पूरा गोलाकार इसको कहेंगे संपूर्ण। और कंप्लीट रोशनी के साथ, भरपूर रोशनी के साथ, अर्थात संपन्न फुल, तो फुल एंड कंप्लीट। तो फुल भी और कंप्लीट भी, और देवताओं की यही महिमा है, सर्व गुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण। तो फुल लाइट माना गुणों की लाइट, और सर्व गुण संपन्न फुल लाइट, और 16 कला संपूर्ण माना कंप्लीट गोलाकार। एक भी पवित्रता की कला की कमी न हो। 16 कला, चंद्रमा पर ही भारत में पहले ये करेंसी होती थी, 16 आना, 16 आना सच माना 100% सच। तो वो लक्ष्य बाबा ने हमें दिया कि ये संगम पर हमें बनना है, गुणों में भी संपन्न बनना है और पवित्रता की कलाओं में संपूर्ण बनना है। कोई भी कला रह न जाए पवित्रता की, तो उसके लिए बाबा पुरुषार्थ कराते हैं, जिससे ही हम फरिश्ता बनेंगे और फिर देवता बनेंगे। तो जब भी बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ के लिए ताकीद करते हैं, तो यही कहते हैं कि आपको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? बाबा की कदमों पर चलना है, फॉलो बाबा, हाँ फॉलो फादर, जिसमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है, फॉलो तो साकार में ही करेंगे। तो अगर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, उनके कदम पर कदम रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? हर वक्त ब्रह्मा बाबा को भी याद करना पड़ेगा। जब भी कोई परिस्थिति आए, उस समय ये सोचना होगा कि अगर ब्रह्मा बाबा इस समय होते मेरी जगह, तो क्या करते? तो जो ब्रह्मा बाबा करते वो मुझे भी करना है, क्योंकि फॉलो फादर करना है। और उसमें बाबा कहते बहुत सहज है, बस आपको अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। जैसे किसी को कहा जाए भाई तुम हमारी गाड़ी को फॉलो करो, बस मैं लेफ्ट जाऊं तो तुम लेफ्ट आओ, राइट जाऊं तो राइट आओ, लाइट को अब देखते रहो किस तरफ लाइट जाती है, तो वो दूसरा पीछे वाला ड्राइवर और कुछ नहीं सोचता है, कहाँ जाऊं, लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, वो बस आगे वाली गाड़ी को फॉलो करता है। और अगर वो गाड़ी थोड़ी ओझल हो गई तो फास्ट जा करके उसके साथ हो जाता है, ताकि वो हम उनसे दूर न जाएं। तो बाबा भी कहते हैं कि आपको सोचने की दरकार ही नहीं है, क्या करूं, कैसे करूं न करूं, ये होगा नहीं होगा, बस ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। ये अगर हमारे लिए कसौटी हो तो ज्यादा बुद्धि को चलाने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि जो भी करता ब्रह्मा बाबा वो सही करता। और अगर बाबा भी कई बार कहते हैं कि अगर गलती भी हो गई तो शिव बाबा ठीक कर देगा, क्योंकि जिम्मेदार तो वो है। उनकी याद में अगर करता हूं तो वो सही होगा, अगर गलत भी हुआ शिव बाबा जिम्मेदार है, वो ठीक कर देगा। पर मुझे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, शिव बाबा की याद में करना है। तो क्या करना होगा, क्योंकि संस्कारों को शुद्ध बनाना है, यही टॉपिक है ना, संस्कारों को शुद्ध बनाने की विधि। कई समझते हैं ये संस्कार तो बदलना बहुत मुश्किल है, बाबा कहते हैं मुश्किल नहीं है। हम सब ये शिकायत करते क्या करें, हमारे पुराने संस्कार है, पुराने संस्कार है, तो बाबा याद दिलाते हैं कि सबसे पुराने संस्कार तो आपके सतयुग के हैं। ये जो कहते हो क्या करें, इस पुराने संस्कार है, ये पुराने संस्कार तो द्वापर युग के हैं, ये सतयुग के थोड़ी है। तो पुराने से पुराने संस्कार तो सतयुग के देवता ही संस्कार है। आपके जो अनादि गुण हैं वो तो पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, शक्ति यही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार थोड़ी है। तो अनादि गुणों को याद करो और आदि संस्कारों को याद करो। अनादि गुण हमारे जो ओरिजिनल गुण हैं, सात गुण बताते हैं ना, सात रंग बताते हैं, सात में सब कुछ आ जाता है, सात सुर बताते हैं, सात दिन बताते हैं, तो सात में सब कुछ आ जाता है, सारा जीवन ही सात रंग सात में है, सात दिन, आठवां दिन आता नहीं है, जीवन ही सात दिन का है, सारा म्यूजिक का संसार ही सात सुरों में है, दुनिया के सारे रंग सात रंगों में है, जिसको हम कहते हैं अनादि गुण आत्मा के, इननेट क्वालिटीज आत्मा के, वो भी मूल रूप में सात हैं, और जैसे उन गुणों को जोड़ते हैं तो दैवी गुण बन जाते हैं। ये भी एक विचार सागर मंथन कर सकते हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये सात मूल गुण हैं, और किन्हीं दो इन मूल गुणों को मिलाओ तो दैवी गुण बन जाएंगे। दैवी गुणों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, 36 उसमें मूल दैवी गुण बताते हैं, अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, निर्भयता, सरलता, ये सब दैवी गुण हैं। तो दो गुणों को मिलाओ तो ये दैवी गुण बन जाएंगे, दो तीन गुणों को मिलाओ, जैसे वो सात रंगों में विबग्योर कहते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सात मूल कलर्स हैं, उसमें दो कलर को मिलाओ तो तीसरा कलर बन जाएगा, वो दो रंग को मिलाने से ही बनता है। तो जो दैवी गुण है वो अनादि गुणों को मिलाने से वो दैवी गुण बन जाते हैं। अंतर्मुखता और गंभीरता का गुण आ जाए तो सहनशीलता का गुण अपने आप आ जाएगा, क्योंकि अंतर्मुखी जो होगा वो क्योंकि गंभीर है इसीलिए अंतर्मुखी भी होगा, वो सहनशील जरूर बन जाएगा। तो सहनशील बनना है तो अंतर्मुखी और गंभीर बन जाओ, सहज हो गया सहनशील बनना। इसलिए आत्मा अपने मूल गुणों को अगर याद करती रहे तो संस्कारों में परिवर्तन लाना मुश्किल नहीं है। एक व्यक्ति था, एक भाई था, बहुत जोर से बोलता था, तो हमने उनको एक दिन कहा, भाई जी आप थोड़ा धीरे बोला करें ना, इतना जोर से, जबकि आप एक ही व्यक्ति से बात कर रहे हैं और चारों ओर तो बहुत लोग हैं, आपको तो उस एक व्यक्ति से ही बात करनी है, तो दूसरे लोग क्यों सुने, जरूरत नहीं है ना, आप धीरे से भी बात कर सकते हैं। जब उस एक को ही सुनाना है, सारी सबको तो नहीं सुनाना है आप जो बात कर रहे हैं, उस एक के ही काम की चीज है, औरों के तो काम की चीज भी नहीं होगी, बात भी नहीं होगी। तो आप धीरे से बोला कीजिए ना। तो क्या जवाब देता है, क्या करूं बहन जी, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसी आवाज दी है, तो मेरी माँ बाप ने मुझे ऐसी आवाज दी तो दोषी किसको बनाया उसके लिए, अपने माँ बाप को। सोचो तो सही, अब माँ बाप ने क्या दोष किया, चलो माँ का आवाज ज्यादा बड़ा होगा या पिता का होगा वो बच्चे को मिला, लेकिन परिवर्तन तो खुद कर सकते हैं ना। जब भी कोई बड़ी आवाज हो जाए उस समय याद रहे मुझे धीरे से बोलना है या मुझे चुप रहना है, हमारा मुख हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हमारी जुबान हमारे वश होनी चाहिए। जब बाबा कहते हैं प्रकृति को वश करना है, तो क्या हम अपनी इंद्रियों को वश नहीं कर सकते हैं? अवश्य वश कर सकते हैं, लेकिन अटेंशन चाहिए। इसीलिए बाबा हमेशा हमारा ध्यान खिंचवाते, अटेंशन प्लीज, अटेंशन। क्योंकि बिना अटेंशन के हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और अटेंशन के साथ फिर एक दृढ़ता कि मुझे बदलना ही है कुछ भी हो जाए। जब मुझे पता चला कि ये मेरा संस्कार ठीक नहीं है, तो अंदर में वो दृढ़ता आए कि मुझे बदलना ही है, उसमें आनाकानी ना करे, ठीक है देख लेंगे। बाबा कई बार कहते हैं गेगे की भाषा मत बोलो, कर लेंगे देख लेंगे, हो जाएगा, तो ग ग गे 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 गे। दादी गुलजार यही कहा करते थे, ये गेगे की भाषा कौन बोलता है, गेगे की भाषा कौन बोलता है, छोटा बच्चा, अभी छोटा बच्चा है ना, अभी चलना नहीं, थोड़ा चलना नहीं सीखा है, वो घुटनों पर ही चल रहा है, और वो सुनता तो रहता है ना, माँ बाप बोलते हैं, भाई बहने बोलते हैं, तो वो कैच तो करता ही है, और वो बोलने की कोशिश भी करता है लेकिन बोल नहीं पाता है, तो वो गे 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 करता है और उसके मुंह से लार निकलती रहती है बच्चे की। तो जो गेगे गेगे करता है ना, वो छोटे बच्चे जैसा है। अब हम तो छोटे बच्चे नहीं हैं, हम तो बड़े हैं। इसीलिए कोई अगर कहे कि मैं ये करूंगा देखूंगा हो जाएगा, गा गा गेगे गेगे, माना वो बहुत ही अबोध बालक है, वो समझदार नहीं है। समझदार कभी ऐसे नहीं कहेंगे। इसीलिए मम्मा का क्या स्लोगन था, मम्मा बहुत सुंदर स्लोगन बताती थी कि पुरुषार्थी किसको कहा जाएगा, पुरुषार्थी ये नहीं कहेगा हाँ करेंगे हो जाएगा, पुरुषार्थी उसको कहा जाता है जो एक बार अगर भूल हो गई तो दोबारा वो भूल ना हो, दोबारा भूल ना हो। चलो एक बार हो गई, सीख लिया, समझ लिया कि ये गलत है, तो फिर उस गलती को उसी समय सुधारो, और फिर अगर वो गलती हो तो याद करो मैंने इस गलती को सुधारना है, और फुल स्टॉप लगा दो, जिसको बाबा कहते हैं उसी समय ब्रेक लगा दो, ब्रेक लगा दो। बार बार भूले अगर करते रहेंगे तो बाबा कहते सुधरेंगे कब, फिर अगर कोई कहे तो कहेंगे सॉरी, अगर कहते भी हैं तो सॉरी भी कब तक, सॉरी भी कब तक। एक छोटा बच्चा है बार बार मम्मी को कहेगा मम्मी सॉरी सॉरी सॉरी, तो मम्मी को आएगा ना गुस्सा, ये क्या सॉरी सॉरी कर रहा है, बदलता तो है नहीं। तो बाबा को भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है हम बच्चों पर, उस दिन बाबा की मुरली में था कि कई बच्चे कहते हैं बाबा बार बार मुरली में वही तो कहता है, बच्चे मुझे याद करो, बच्चे मुझे याद करो, हाँ मुझे याद करो। बाबा की हर मुरली में ये आता है, जरूर आता है। तो हर मुरली में एक ही बात क्यों आती है, मुझे याद करो, तो पता है ना हमको याद करना है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, बाबा कहते रहेंगे, अंत तक कहते रहेंगे, जब तक पूरा उसको करेंगे नहीं। क्योंकि आदि और अंत का यही सार है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आदि में भी यही कहा, अंत में भी यही बाबा सार बताएंगे। एक सेकंड का पेपर होगा, इसलिए बाबा जब भी ड्रिल कराते हैं तो यही कहते हैं, बच्चे अभी एक सेकंड में अशरीरी हो जाओ, एक सेकंड में घर चले जाओ, एक सेकंड। एक सेकंड क्यों कहते हैं बाबा, क्योंकि अंत के समय हमारा पेपर भी एक सेकंड का ही होगा, बहुत लंबा चौड़ा पेपर नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, हाँ ना हाँ, टिक मार्क करना है या रॉन्ग करना है, बस। तो वो एक सेकंड का पेपर क्या होगा उस समय, और कोई याद ना आए सिवाय बाबा के। लेकिन बाबा ये भी कहते उसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और जो दुनिया में एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता है, मना लीक नहीं होना चाहिए, पता नहीं होता है क्वेश्चंस क्या आएंगे। लेकिन समय कितनी अवधि कहाँ तारीख ये सब पता होता है, पर क्वेश्चन पेपर क्या आएगा वो पता नहीं होता है। और हम बच्चों के लिए जो फाइनल एग्जाम आएगा उसमें क्वेश्चन पेपर पहले बाबा ने आउट कर दिया है, वो एक ही सेकंड का क्वेश्चन होगा कि उस समय बाबा के सिवा और कोई याद न आए, आत्मा समझकर मुझे याद करो, वही अंतिम स्टेज भी हो जो आदि सो अंत। लेकिन वो कब आएगा पेपर, कहाँ आएगा, किस रूप में आएगा, कब आएगा वो पता नहीं। इसीलिए मम्मा ये कहती थी कि हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो, हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। क्योंकि अगर हर घड़ी अंतिम घड़ी समझेंगे तो हम अपने ऊपर बहुत ध्यान देंगे, है ना। कई बार पता ही नहीं चलता, चलो कल कर देंगे, परसों कर देंगे, 8 दिन के बाद कर देंगे। मैनेजमेंट में एक पॉइंट सिखाई जाती है, एक होता है इम्पोर्टेंट, दूसरा होता है अर्जेंट। दोनों में अंतर है या एक ही बात है, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट? अंतर तो होगा ना, दो शब्द हैं। इम्पोर्टेंट माना बहुत महत्व का है, अर्जेंट माना अभी होना है। तो वास्तव में देखा जाए कोई भी काम अर्जेंट होता नहीं है, इम्पोर्टेंट होता है जरूर। और वो इम्पोर्टेंट होने के कारण हमें उसी समय करना होता है, परंतु अगर हम उसको पोस्टपोन करते जाते हैं और फिर ऐन मौके पर हमें उसी समय चाहिए तो फिर मुश्किल हो जाता है, नहीं हो पाता है, फिर अर्जेंट 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 करते और टेंशन हो जाता है। अर्जेंट की नौबत ही क्यों आई, उसको इम्पोर्टेंट के रूप में क्यों नहीं रखा कि भाई ये इसका ये इम्पोर्टेंट है, इसको हमें पहले करना है, उसको प्रायोरिटी देनी है, ये सबसे पहला काम यही करना है। तो बाबा भी हमें कहते हैं सबसे पहला काम यही है कि अपनी अंदर की चेकिंग, क्योंकि चेकिंग होगी तो फिर चेंज करेंगे। फिर बाबा कहते केवल चेकिंग ही नहीं तो चेकिंग करते रहते, चेंज तो करते नहीं है। फिर बाबा कहते दृढ़ता चाहिए, क्योंकि बिना दृढ़ता के चेंज नहीं होगा। खाली चेकिंग करेंगे तो भी अलबेलापन आ जाता, ठीक है फिर कहीं यहाँ करेंगे, चेकिंग तो कर ली ना, पर चेंज नहीं किया इसका मतलब है कि अभी पोस्टपोन ही कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। अब भी ये आत्मा शरीर छोड़ दे तो मेरी स्थिति कैसी होगी, मुझे कौन याद आएगा। कई बार कईयों का सुना है किसी ने इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा, अब वो शरीर भी वो गुस्सा सहन नहीं कर सकता है, तो अचानक एकदम ब्रेन स्ट्रोक हो गया, अचानक हार्ट अटैक आ गया, इतना गुस्सा किया, क्योंकि ये शरीर भी नहीं झेल सकता है। लेकिन उसी समय अपने आप को कंट्रोल, मुझे गुस्सा नहीं करना है, नो। गाड़ी को ब्रेक लगाते ना, पावर ब्रेक होती है तो उसी समय ब्रेक लग जाती है, ब्रेक पर पांव रखा तुरंत ब्रेक लगनी चाहिए, बाद में थोड़ा आगे चल करके ब्रेक लगेगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा, लेकिन उसी समय ब्रेक लगे। इसीलिए बाबा कई बार कहते नो, नहीं नहीं नहीं, जैसे कहा आप अपने आप को बदल देंगे। इसीलिए गेगे की भाषा छोड़कर ये नहीं का ब्रेक अवश्य उस समय लगाना चाहिए, तब कई एक्सीडेंट से बच जाएंगे। ब्रेक पावरफुल भी चाहिए और ब्रेक लगानी भी आनी चाहिए। कई ऐसे भी करते हैं ब्रेक की बजाय वो इतने कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि ब्रेक की बजाय एक्सेलरेटर को दबा देते हैं। एक्सेलरेटर को दबा दिया तो क्या होगा, जबरदस्त एक्सीडेंट होगा। कई बार एक्सेलरेटर दबाना है आगे जाना है और ब्रेक दबाते रहते हैं तो गाड़ी तो वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी। तो ब्रेक कब लगाना है, एक्सेलरेटर कब दबाना है, जब तीव्र पुरुषार्थ करने की बात आती है तो एक्सेलरेटर दबाओ। जब कोई भूल हो जाए, अपने आप को करेक्शन करने की बात आती है तो ब्रेक लगाओ, नहीं। प्रश्न नहीं करो ये क्यों होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, अरे नहीं होना चाहिए कहने से क्या होगा, नहीं होना चाहिए तो नहीं करो ना, पता है नहीं होना चाहिए फिर क्यों करते हो। क्योंकि दुनिया में ये एक रस्म बन गई है। हाँ, कईयों को कहते भाई ये तुमको आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो क्या जवाब देते हैं, क्या करें हम तो मनुष्य है ना, मनुष्य तो भूले करता है, हम भी भूले करते हैं। तो एक कहावत बना दी है कि भूले करना ये मनुष्य का काम है और क्षमा करना ये भगवान का काम है ना। इंग्लिश में कहते हैं टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। तो इंसान है ना हम, इंसान तो भूले करेगा ही, हम इंसान भूले करेंगे तभी तो भगवान क्षमा करेगा। तो क्या भगवान को एक काम दे दिया कि आप क्षमा करो और मैं भूले करूं? हाँ, भक्ति मार्ग में आरती करते हैं ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो भगवान को कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो, हाँ ये मिटाओ ये हरो, और खुद को क्या कहते हैं, उनके बिना तो दुनिया कैसे चलेगी, ये काम विकार नहीं होगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, क्रोध नहीं होगा तो संसार में कैसे रहेंगे, लोभ नहीं होगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी, मोह नहीं होगा तो बच्चों को कैसे पालेंगे, अहंकार नहीं होगा तो लोग हमारा सुनेंगे ही नहीं, इनके बिना तो बेंजी संसार चलेगा ही नहीं। और बाबा कहते बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, सत्युग में तो ये विकार थे ही नहीं ना, तो कितना अच्छा चल रहा था संसार, और अभी इन विकारों के वश हो गए तो क्या हालत हो गई है दुनिया की। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने ऊपर पूरा कंट्रोल, और उस कंट्रोल के लिए बाबा बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बताते हैं? देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी, हर कर्म देही अभिमानी स्थिति से करो। क्योंकि जो देही अभिमानी स्थिति से करेगा वही विदेही भी होगा। विदेह राजा जनक राजा को कहते हैं, तो विदेह राजा को या विदेही राजा को, उसका अर्थ क्या है? क्योंकि वो सदा आत्मा को देखता था। जनक राजा की जो कहानी आती है वो आत्मा को देखता था, है ना? बताते हैं कि एक सन्यासी उनके द्वार पर गया और कहा कि आपका महल तो बहुत सुंदर है, आप कैसे इतने बड़े महल में रहते हुए उसके आकर्षण में नहीं आते हो? आप विदेह राजा कैसे कहलाते हो? आपको आकर्षण नहीं होता इतने सुंदर महल का? तब राजा ने उसको कहा कि अच्छा, ये दीपक ले जाओ और इस दीपक के सारे मेरा महल देख कर आओ, बहुत सुंदर महल है, तो जरा अवलोकन करके आओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये दीपक बुझे नहीं, बस ये सिर्फ बात का ध्यान रखना। तो दीपक न बुझे ये ध्यान रखना है, ये उसको ख्याल में दिया। अब वो महल देखने गया, बहुत सुंदर था, लेकिन बार बार ध्यान तो दीपक पर जा रहा था, तो महल तो ऐसे ही नाम मात्र देख लिया, क्योंकि दीपक बुझे नहीं ये उनको लक्ष्य था। तो वापस आया तो राजा ने पूछा, आपने मेरा महल देखा? तो कहा, राजन महल तो देखा लेकिन ध्यान तो दीपक पर था। तो राजा ने यही कहा कि भले इस महल में रहता हूँ लेकिन मेरा ध्यान दीपक पर ही होता है, आत्मा पर ही होता है। तो इसी को कहेंगे विदेही स्थिति। और वो विदेही स्थिति कैसे बनी, कैसे बनी, उसकी भी कहानी है राजा जनक की। एक सेकंड में वो विदेही स्थिति कैसे आई, क्योंकि उसने कहा एक सेकंड में मुझे जीवन मुक्ति चाहिए। अष्टावक्र उसके गुरु थे, एक सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मतलब क्या? जीवन में रहते सब झंझटों से मुक्त, देह अभिमान से मुक्त, विकारों से मुक्त, पापों से मुक्त, दुखों से मुक्त, एक सेकंड में जीवन मुक्ति। अनेक विद्वान उनके सामने थे लेकिन उन विद्वानों ने एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है वो बता नहीं सके। वो तो लंबा लंबा सुनाने लगे, काम को लंबा लंबा मत सुना, एक सेकंड। तो वो जब वो सोचा अभी तो कुछ होगा नहीं, तो वो घोड़े पर चढ़ रहा था, अपने घोड़े पर चढ़ के जा रहा था, उसी समय अष्टावक्र उनको मिले। अष्टावक्र ने कहा, मैं आपको एक सेकंड में जीवन मुक्ति का राज बता सकता हूँ। अब वो घोड़े पर चढ़ रहे थे तो घोड़ा पर एक पैर उसका, वो जो सैडल होता है जहाँ पांव रखते हैं उस पर था, और दूसरा घोड़ा, दूसरा पैर धरती पर था। तो एक पैर जैसे उस पर चढ़कर फिर उस पांव वो सैडल पर रख के जंप लगाना था घोड़े पर, और दूसरा पैर तो धरती पर था। तो अष्टावक्र ने पूछ लिया कि अभी आप कहाँ हो, आप कहाँ हो? तो उसने कहा, मैं घोड़े पर हूँ। पर घोड़े पर तो एक ही पैर था, एक पैर तो धरती पर था। तो घोड़े पर हूँ या धरती पर हूँ, अभी ये डिसाइड करना होगा। अब वो समझ नहीं सका राजा, तो कहा कि आप घोड़े पर भी हो और धरती पर भी हो, आप दोनों पर हो और दोनों पर नहीं हो। अब ये राज है, दोनों पर हो, धरती पर भी हो, घोड़े पर भी हो, क्योंकि एक पैर तो घोड़े पर है ना, एक पैर धरती पर है। दोनों पर हो और दोनों पर नहीं हो, क्योंकि बस अभी चढ़ने वाला था घोड़े पर, धरती से तो एक पांव उठ चुका था। तो इसको कहा सेकंड में जीवन मुक्ति, संसार में है और संसार में नहीं है। व्यवहार कर रहे हैं और एक सेकंड में न्यारे हो गए, सबको देख रहे हैं, देखते हुए नहीं देख रहे हैं, न्यारे और प्यारे। ब्रह्मा बाबा ऐसे ही थे, जितने ही न्यारे थे उतने ही प्यारे थे। इसको कहेंगे विदेही स्थिति। न्यारे होकर प्यारे बनना है, प्यारा होकर न्यारा नहीं बनना है। एक होता है न्यारा बनकर प्यारा बनना, न्यारे हैं फिर भी प्यार तो सबके साथ है। प्यार सबके साथ ये बुरी चीज नहीं है, हर एक के साथ प्यार है, हर एक से प्यार, ऐसे नहीं इसके साथ प्यार इसके साथ नहीं है। तो न्यारा होकर प्यारा बनना ये विदेह स्थिति है। अब प्यारे इतने बन गए और फिर एकदम अचानक न्यारे बन गए, उसको विदेह स्थिति नहीं कहेंगे, वो तो जबरदस्ती हो गए। उसको तो कई बार बाबा कहते शमशानी वैराग्य, न्यारे बन गए। तो शमशानी वैराग्य नहीं लाना है, ज्ञान के आधार से वैराग्य लाना है। यानी न्यारे हैं लेकिन फिर भी सब प्यारे हैं। इसको हम कहेंगे सेकंड में जीवन मुक्ति। छोड़ो कुछ भी नहीं पर फंसो कहीं भी नहीं, न छोड़ना है न फंसना है, यह है मध्य मार्ग। इसीलिए बाबा कहते तुम सन्यासी नहीं हो, सन्यासी तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न पत्नी सामने होगी न कोई ऐसी दृष्टि जाएगी, दूर बास खुश बास, तो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन बाबा बच्चों को कहते नहीं, घर गृहस्थ में रहना है, जिम्मेदारियां भी संभालनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पर ऐसा न्यारा और प्यारा भी बनना है जो फंसना भी नहीं है। तो न छोड़ना है न फंसना है और न नया जोड़ना है, क्योंकि समय नहीं है, समय नहीं है अभी, तो नया भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि फिर वही झंझट हो जाएगा, नया जोड़ेंगे तो फिर हिसाब किताब बन जाएगा। तो न छोड़ना है न फंसना है न नया जोड़ना है, तो फिर चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है निभाना है, निभाना है। क्योंकि छोड़ देंगे तो कायर कहलाएंगे, फंस जाएंगे तो कमजोर कहलाएंगे, नया जोड़ेंगे तो लोभी कहलाएंगे, पर निभाना है, ये है फर्ज अदाई, ये है जिम्मेदारी। हाँ, तो इसीलिए हर वक्त अगर हम ये बुद्धि में रखते हैं ना, तो हम अपने आप को बहुत बदल सकते हैं, बहुत बदल सकते हैं। क्योंकि हमको छोड़ना भी नहीं है, कई तो छोड़ना चाहते दुखी हो जाते हैं क्योंकि छोड़ नहीं पाते हैं। बाबा कहते क्यों छोड़ो, जिम्मेदारी को छोड़ना थोड़ी है। अर्जुन ने कहा कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरे मामा चाचा काका मोहवश था, मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान ने क्या कहा, तुमको लड़ना है, इसी बीच में रहना है, मैदान में रहना है, भागना नहीं है। अगर मैदान से भाग जाओगे तो तुम कायर कहलाओगे, तुम्हारे आगे की पीढ़ियां क्या कहेगी कि हमारे पूर्वज तो कायर थे क्योंकि मैदान छोड़कर भाग गए। तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का फर्ज क्या होता है? धट पड़िए, धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए। जिम्मेदारी को छोड़ना थोड़ी है, ये तो कायरता है, इसीलिए छोड़ना भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। कमल फूल हमारा सिंबल है। तो इसीलिए जब बाबा ने हमें ये लक्ष्य दिया है तो हम कैसे उसको निभाएं भी, दुखी होके ना निभाएं, चिंतित होके ना निभाएं, परेशान होके ना निभाएं, डिप्रेशन में ना चले जाएं। आजकल कई वो ये इतना बुरा हाल हो गया दुनिया में, टेंशन 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 से भी आगे चले गए हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में भी क्यों आना है, अवसाद क्यों होना चाहिए? अगर हम न्यारे प्यारे हैं तो ज्यादा सोच भी नहीं चलेगा, पर ज्यादा सोच लेते सोच लेते सोच लेते दिमाग को इतना कमजोर कर लेते हैं जो फिर सोचने की नौबत भी नहीं आती है, खाली हो जाता है। तो बाबा कहते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर जो बाबा कहते हैं ना, चेक एंड चेंज, ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्थिति में यही देखा। कितने न्यारे इतने प्यारे बाबा हो गए, और मुख से कभी ऐसा शब्द भी ना निकले जो किसी को दुख पहुंचे, ये भी बहुत जरूरी है। कई बार हमको हम नाराज हो गए गुस्से हो गए तो ऐसा शब्द भी बोल देंगे, कटाक्ष का शब्द बोल देंगे तो दुखी कर देते, दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, वो भी नहीं हो। प्यार प्रेम भी हो और सरल भी हो, सहज भी हो और हल्के भी रहें। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ ब्रह्मा बाबा का। बाबा को किसी बहन ने बहुत बड़ा सेवा समाचार लिखा था, बाबा मैंने ये सेवा की वो सेवा की, बहुत लंबा पत्र लिखा था सेवा समाचार का। अब से वो तो बाबा को पत्र लिखा, फिर बाबा को सामने रूबरू सुनाने के लिए मधुबन आई थी, और मधुबन आई तो बाबा को फिर से सुनाने लगी, बाबा मैंने ये सेवा की मैंने वो सेवा की, ये किया वो किया, बड़ा नशा भी दिखा रही थी, यहाँ सेवा का थोड़ा अभिमान भी आ गया उनको। अब बाबा को उसको रोकना था, हाँ तो बाबा ने उसको क्या कहा, बच्ची आपने ये पत्र में भी लिखा था ना? हाँ बाबा मैंने पत्र में भी लिखा था, बाबा आपको सारा समाचार डिटेल में लिखा था। तो बाबा ने तुरंत कहा, हाँ बच्ची बाबा को पता है, बाबा को पता है, बाबा को पता है ये बाबा ने कहा, मना चुप हो जाओ अभी ज्यादा नहीं बोलो, क्योंकि बोलती जा रही थी। अभी मतलब ये नहीं है कि बस किया, बहुत आपने बहुत सुना लिया, चुप करो अभी इतना सारा बोलने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे नहीं बोला क्योंकि उससे उसको दुख होगा। बस बाबा ने इतना ही कहा, बच्ची ये आपने पत्र में भी लिखा था ना? हाँ बाबा। तो फिर हम बाबा जानते हैं, बस बाबा जानते हैं, माना चुप हो जाओ। तो ऐसे हमारे शब्द भी हो जो किसको दुख भी ना मिले, किसको बुरा भी ना लगे, इसमें न्यारापन और प्यारापन दोनों झलकता है। क्योंकि इतना प्यारापन होगा तो क्या कहें, अच्छा अच्छा ये भी किया, ये भी किया, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश बेटा, और करो और करो और करो। लेकिन न्यारा भी बनना है, हाँ पता है, बहुत अच्छा, बस बहुत अच्छा का पूरा। क्योंकि किसी बात को बढ़ाना भी नहीं है, बढ़ा करके टाइम वेस्ट एनर्जी वेस्ट सब वेस्ट हो जाता है। और बाबा कहते हैं समय बहुत कम है, समय आपकी रचना है, ऐसे नहीं समय पर सब हो जाएगा, नहीं, समय से पहले हमको तैयार होना है। ब्रह्मा बाबा 33 वर्षों में संपूर्ण बन गए, और लास्ट के जो बाबा के दिन थे, बाबा इतने न्यारे प्यारे हो गए, और बाबा जैसे खड़े होते थे इतनी पावरफुल दृष्टि देते थे, सब एकदम अटेंशन में आ जाते थे। बाबा के आगे होता था ये, बाबा को ये सुनाए, लेकिन जैसे बाबा के सामने आते थे, बाबा की इतनी ऊंची स्थिति देख करके बाबा के आगे कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं होती थी, इतनी ऊंची स्थिति थी। दादियों को भी हमने देखा, इतनी ऊंची स्थिति थी अंत के दिनों में, दादी को ये सुनाओ वो सुनाओ आता था, लेकिन जैसे दादी के सामने गए बस मुख बंद हो जाता था, बस दादी से दृष्टि लेते रहते थे। लगता था ये छोटी छोटी बातें क्या दादी को सुनाना, दादी की स्थिति तो कितनी ऊंची है। तो ये छोटी छोटी बातें लगती थी, क्योंकि दादी की ऊंची स्थिति तो उस स्थिति के आगे वो तो छोटी बातें ही है ना। हमारी तो छोटी बातें भी हमको बड़ी लगेगी, लेकिन जब दादियों की स्थिति देखते थे तो इतनी ऊंची स्थिति, तब लगता था अरे ये तो हमारी तो बहुत छोटी स्थिति, छोटी बात है, क्या सुनाना, छोड़ो छोड़ो तो छूटो, पकड़ के नहीं रखना है, छोड़ो तो छूटो। जिसमें बाबा कई बार कहते हैं लेट गो एंड लेट गॉड, गो और डी जोड़ दो, लेट गॉड, हाँ दे दो बाबा को बोझ, बाबा को दे दो। बाबा कहते हैं मुझे दे दो ना बोझ, उसको पकड़ के क्यों रखा है। एक पक्षी डाली को पकड़ के रखता है और फिर देखता है दूसरे तो उड़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं उड़ रहा हूँ, कैसे उड़ेगा, डाली को पकड़ के रखा है। छोड़ो तो छूटो ना, तभी तो उड़ सको। इसीलिए फंसना भी नहीं है, कुछ भी हो जाए फंसना नहीं है। तो अगर ये हमारी बुद्धि में होगा तो हम अपने आप को बहुत मोल्ड कर सकते हैं। जितना अपने आप को मोल्ड करेंगे उतना आप रियल गोल्ड बनेंगे, ये आप समझ लो। मुझे सहन करना है, हाँ कई बार बाबा कुमारियों को कहते हैं, टीचर्स को कहते हैं, हाँ मरना है मरना, मर मर झुक झुक सिख सिख, बाबा भी कहते थे। हमारी दादी, हमारी क्वीन मदर थी, बहुत बहुत प्यारी दादी थी, क्वीन मदर, बड़ी दीदी की लौकिक माँ थी, तो बहुत रॉयल थी, इतनी रॉयल थी जो बात मत पूछो। तो जब भी कोई टीचर उनके पास जाती थी ना तो वो जरूर कहती थी हाँ झुक झुक मर मर सिख सिख, हाँ झुको भी मरो भी सीखो भी। लेकिन भाइयों में हम देखते हैं ना गुस्सा जल्दी आ जाता है, बहनों में आंसू जल्दी आ जाते हैं हाँ जब छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देते हैं, और भाई रोते नहीं हैं। हाँ रोता है कोई भाई यहाँ, हाथ उठा, कोई रोता भी होगा क्या, नहीं कोई नहीं रोते, रोते नहीं है, लेकिन वो आंखों से नहीं टपकता है परंतु मुख खुल जाता है, गुस्सा गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो बाबा कहते हैं मुझे अपने संस्कारों को बदलना है, हर हालत में बदलना है, और उसके लिए बाबा हमको इतना स्वमान देते हैं। वो स्वमान में रहो तो वो नशा रहेगा, उसके लिए उसके उस नशे की भेंट में बाकी सब बातें छोटी लगेगी। आज भी बाबा ने कहा ब्राह्मण चोटी, इतने अपने कुल का नशा होना चाहिए, मैं कौन हूँ, सब कहा ना, दादी कहती थी मैं कौन, मेरा कौन, मेरा टीचर कौन, सबसे ऊंचा परम पिता परमात्मा हमारा टीचर है, कोई साधारण व्यक्ति हमारा टीचर नहीं है। हम शिविर कराते थे तो एक भाई अपना अनुभव सुना रहा था हमें, उसने पीएचडी किया था, तो पीएचडी की थी और बहुत बड़ा प्रोफेसर था, तो हमने उनसे पूछा कौन से कॉलेज में आदि आदि सब बता रहा था, तो बता रहा था कि मेरा जो प्रोफेसर था वो जिसने जिनके अंदर मैंने पीएचडी किया वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, जो भारत का राष्ट्रपति बना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कहते हैं मुझे इतना नशा है कि मेरा प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, वो राष्ट्रपति बन गया, सबको ये सुनाता था। अब वो तो फिर भी मनुष्य था, और हमारा टीचर कौन हा? हमारा टीचर कौन, इसलिए संस्कार परिवर्तन करने लिए पहले अपना स्वमान बढ़ाओ, स्वमान बढ़ाओ, और हर रोज बाबा हमको कोई न कोई नया स्वमान देते हैं, नया नया टाइटल देते हैं। कल बाबा ने टाइटल क्या दिया, अब लाइट हाउस हो, आज बाबा ने टाइटल क्या दिया, अब ऑलराउंडर हो, हर रोज कोई ना कोई नया टाइटल बाबा देते हैं, और वो टाइटल भी अगर हमें याद रहे तो हम अपने आप को बहुत सहज सरल रीति से परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि वो रॉयल संस्कार आत्मा में आएंगे, और वो रॉयल्टी अगर संस्कारों में आएंगी तो ऑटोमेटिकली हमारा बोलना कम, हमारी दृष्टि शुद्ध होती जाएगी, हमारे अंग अंग शीतल होते जाएंगे, हमारा मन विचार सागर मंथन में रहेगा, व्यर्थ और अशुद्ध तो दूर से ही भाग जाएंगे और माया दूर से ही विदाई ले लेगी। अभी भी अगर कहते हैं क्या करें, माया आती है, माया क्यों आती है, क्योंकि मैं और मेरापन अभी तक गया नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं, जब मैं कहना हो मैं आत्मा, मेरा कहना हो मेरा बाबा, और मैं मेरे से दूर। तो एक एक मुरली की एक एक पॉइंट हमें हमारे संस्कारों को बदलने में मदद करती है, विचार सागर मंथन करने में सहयोग देती है। मनन भी करना है, चिंतन भी करना है, मंथन भी करना है, बुद्धि उसमें बिजी रहे। कारोबार तो करना ही है, पर सारा समय थोड़ी कारोबार होता है, और बातों में कितना समय श्वास शक्ति बहुत व्यर्थ जाता है। उस समय उसको एक सेकंड में ब्रेक लगाकर ज्ञान का मनन चिंतन करो, जिससे सहज हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, संस्कारों का शुद्धिकरण होगा। बस अपने पर अटेंशन दो, तब बाबा के इस शोकेस के सच्चे शोपीस बन जाएंगे। कुमारों के लिए तो बाबा कहते हैं, आजकल तो कितना युवा पीढ़ी तोड़फोड़ करती है, लेकिन ये ब्रह्मा कुमार डिस्ट्रक्शन का काम नहीं करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इसलिए सरकार भी बहुत ब्रह्मा कुमारियों को बहुत आगे रखती है। प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, वहाँ कोई ना कोई हमारा सेंटर होता है, और हमारी बहनें उनसे उस देश में मिलती है। उस देश में भी कहते, अच्छा आप लोग यहाँ भी आपका सेंटर है, तो वो उसको पता चलता है कि ब्रह्मा कुमारियों का सेंटर वहाँ भी है। अभी पोलैंड गया, पोलैंड में भी हमारा बहुत अच्छा सेंटर है। यूक्रेन में वहाँ जाएगा कल जाएगा, तो वहाँ भी अपना सेंटर है, यूक्रेन में भी सेंटर है, वहाँ भी बाबा के बहुत बच्चे हैं। और सचमुच तो इतनी खुशी होती है, तो इसलिए बाबा के बच्चों को देख करके इतनी खुशी होती है, बाबा के सेंटर जहाँ तक आए। और हम तो कितने देशों में गए हैं, 75 देशों में गए हैं, और जिस देश में जाते हैं वहाँ पर जो भारत का राजदूत है उनसे ज़रूर मिलते हैं, भारत का राजदूत। अभी भी मैं बर्मा गई थी, तो बर्मा में भी जो भारत का राजदूत है उनसे मिले थे। तो मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया कि आप भी और देशों में होंगे तो वहाँ आपसे ब्रह्मा कुमारी बहनें मिलती होगी, तो कहा जहाँ भी मैं जाता हूँ ब्रह्मा कुमारी बहनें हमेशा मेरे पास राखी बांधने आती है। तो सभी भारत के राजदूत जिस भी देश में होते हैं वो तुरंत निमंत्रण हमें दे देते हैं कि हाँ ब्रह्मा कुमारियों को बुलाओ। 15 अगस्त मनाते, अभी भी 15 अगस्त मनाया, सब देशों में ब्रह्मा कुमारियों को निमंत्रण देते हैं और उनको कहते हैं भाषण करें आप 15 अगस्त पर, इतनी बड़ी सभा उनकी होती है, पर ब्रह्मा कुमारियों को आगे रखते हैं। तो ये भी एक कितनी बड़ी बात है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कैसे बाबा अपना कार्य कर रहे हैं, दुनिया के आगे हम शोपीस बन रहे हैं। लेकिन बाबा ने बहुत बड़ी बात कह दी एक दिन कि केवल आपकी महिमा न हो, आप में वो बाबा को देखे, भगवान को देखे, और वो महसूस करे कि इनको भगवान पढ़ाते हैं, ये भगवान हाँ इनके साथी हैं, भगवान का कार्य कर रहे हैं, तब हमारा ये कार्य सफल होगा और बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ये सब आप पर जिम्मेदारी है, तो इसीलिए आपको मधुबन में बुलाया है। यहाँ बट्टी करिए, अपने आप को भरपूर करें, अपने आप में इतना बल भरें जो सचमुच ऐसे सैंपल बन जाएं दुनिया के शोकेस में, बाबा के शोकेस में दुनिया को दिखाएं कि हम सच्चे सच्चे शोपीस बन करके भगवान का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। चलिए अभी बाबा को उसी शक्ति से याद करेंगे, अपने अंदर कमियों को देखेंगे और दृढ़ संकल्प करेंगे, चेकिंग करके चेंज करेंगे, उसी दृढ़ता से अपने संस्कारों में परिवर्तन लाएंगे। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, इसी स्थिति का अनुभव करेंगे। सीधा बैठेंगे, सबसे पहले मैं कौन, याद करो जो बाबा हमको रोज टाइटल देते हैं, मैं लाइट हाउस हूं, सबको रास्ता दिखाने वाला लाइट हाउस हूं, मैं अंधों की लाठी हूं, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने वाला हूं, मैं रूहानी पंडा हूं, घर का रास्ता सबको दिखाने वाला हूं, इस मैं कौन हूं में इतना नशा चढ़ जाए, जो और सब बातें भूल जाए, मैं हीरो एक्टर हूं, स्वदर्शन चक्रधारी हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर सर्व गुणों का सागर हूं, मेरे सर्व संबंध एक बाप से है। मेरे माता पिता, मेरे शिक्षक, मेरा सद्गुरु एक ही है। ये तन, ये मन, ये धन सब आपका है बाबा। मैं तो केवल निमित्त हूँ। मैं तो केवल ट्रस्टी हूँ। बाबा को भोज दे दो और हल्के हो जाओ। बाबा, ये सब कुछ आपका है। बाबा बोझ उठाने लिए तैयार है। आप केवल निमित्त बनो। मेरा कुछ नहीं, जो कुछ भी है बाबा आपके लिए है। आप ही मेरे सर्वस्व हो। बंधु सखा भी हो, स्वामी सतगुरु भी हो, आपसे सर्व संबंध जोड़कर मैं आत्मा धन्य हो गई। आपको पाकर बाबा सब कुछ पा लिया। इस कलयुगी दुनिया से लंगर उठ चुका है। हम जा रहे हैं वापस अपने घर। न्यारा और प्यारा बनकर हमें उड़ना है बाबा के साथ। हल्का होकर उड़ना है। कोई बोझ नहीं। बाबा ने सारा बोझ मेरा उठा लिया। अपने पलकों पर बिठा लिया है। मैं आत्मा, इतनी हल्की हूँ, उड़ती कला का अनुभव हो रहा है। मेरी सर्व रसियां टूट चुकी है, मैं स्वतंत्र हूं। बस बाबा एक ही कार्य बाकी है, आपको सबके आगे प्रत्यक्ष करना है। सारे विश्व को पता चल जाए कि भगवान आए हैं, नए सतयुगी दुनिया की रचना कर रहे हैं। वही हमारे माता पिता, शिक्षक और सतगुरु हैं। अब उनको ही याद करना है बस। सब कुछ करते न्यारा प्यारा रहना है, कमल फूल समान रहना है। दुनिया का कोई आकर्षण नहीं, ये दुनिया गई की गई, बस एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखनी है। घर जाना है, नई दुनिया में आना है। अब यही मुझे करना है। मुझे कहीं भी फंसना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, निभाना भी है। पर एक बाबा दूसरा ना कोई, इसी लगन से आगे बढ़ते रहना है। मीठे बाबा, मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ, आपने मेरा भाग्य चमका दिया है। कदम कदम में पद्मों की कमाई हो रही है। मेरा भविष्य कितना उज्जवल बना दिया बाबा। बाबा मैं तैयार हूँ, अब घर जाना है। फिर नई दुनिया में आना है। संपूर्ण पावन बनकर जाना है। बेदाग हीरा बनकर जाना है। सच्चा सोना बनकर जाना है। मैं बाबा की बगिया का खुशबूदार फूल हूँ। सर्व गुणों की खुशबू चारों ओर फैला रहा हूँ। मेरा जन्म जन्म सफल हो गया बाबा। जो पाना था वो सब कुछ पा लिया बाबा। कितना आनंद है, कितनी शक्ति का अनुभव हो रहा है। इसी मस्ती में बाबा के प्यार में खो जाओ। समा जाओ।
हमारा